many tens of millions of people have bathed at the confluence of the Ganga, Yamuna, Saraswati on the occasion of the Kumbh Mela.
आज कुंभ मेला के अवसर पर अमावस्या के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान किया है.
Every year there is a Magh Mela where millions come for a spiritual conference and for the bathing in the Triveni.
हर साल जो है माघ मेला होता है जहाँ पर लोग एकत्र होते हैं और स्नान करते हैं.
Every sixth year the Ard or half Kumbh Mela where far more people come.
और छः साल में एक बार जो है अर्ध कुंभ मेला होता है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं.
And every 12 years is the full Kumbh Mela.
और 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ मेला होता है.
Which is perhaps the largest spiritual gathering on earth.
जो कि पूरे धरती में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संख्या में लोग आते हैं.
Bigger than the Olympics.
ओलंपिक्स से भी ज़्यादा बड़ी भीड़ यहाँ.
Or the Super Bowl.
या Super Bowl से भी ज़्यादा.
Today when we were coming back from our holy bath in the Triveni, I was riding on the chariot of Gornitai and Srila Prabhupada being pulled by the oxen.
आज जब हम स्नान के बाद लौट रहे थे तो मैं गौरनिताय के रथ के ऊपर था जिसको बैल खींच कर ले जा रहे थे.
And every direction I was seeing from above people's heads were unlimited human beings.
और मैं हर दिशा में देख रहा था तो अनंत मानवों की संख्या थी.
We looked in front of us as far as the eyes could see into the horizon were unlimited human beings.
और हम देख रहे थे कि हमारे जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती है अनंत मानव दिखाई पड़ रहे थे.
Look behind us and the same.
और हमारे पीछे भी वैसा ही था.
And every time we reached a crossroads, whatever crossroads it was, whether left or right, there was just a sea of people.
और जहाँ पर कोई चौराहे पर पहुँचते तो दोनों तरफ भी ऐसे ही मानवों के समुद्र दिखाई पड़ता.
And I was just wondering, tens and tens of millions of people here today.
और मैं देख रहा था कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र हैं.
And everyone bathed in that same little confluence area.
और सब वो छोटी सी जगह में संगम पे स्नान कर रहे हैं.
It's quite inconceivable.
बिल्कुल अचिंत्य है.
And what's even more inconceivable?
और उससे ज़्यादा अचिंत्य क्या?
Is that anyone survives?
और सब जीवित रहे.
It is Krishna's grace.
ये कृष्णा की कृपा है.
About a century ago, one of the greatest writers of America, Mark Twain, toured the world and came to India.
करीब 100 साल पहले एक बड़े लेखक जो मार्क ट्वेन हैं, वो पूरी दुनिया भ्रमण करते हुए भारत में आए.
And he writes about his experience at the Kumbh Mela.
और वो अपना अनुभव लिखते हैं कुंभ मेला के बारे में.
He had never seen so many people gathered in one place.
उन्होंने कभी इतने सारे लोगों को एक स्थान पर एकत्रित कभी नहीं देखा था.
And in those days there were no cars, there were no planes, there were no buses.
उस जमाने में कोई कार, प्लेन या बसेस नहीं होते थे.
Most of the millions of people that attended walked sometimes hundreds or thousand miles.
जो भी लोग आते वो कई बार हजारों मील पैदल चलकर आ रहे.
These days you'll see there were so many millions and millions today, but tomorrow there won't be near as many.
अभी यहाँ पर लाखों लोग हैं, लेकिन कल इतने सारे लोग नहीं होंगे.
People come by trains and buses and cars, but in those days they walked all the way here and they just stayed here.
उस जमाने में लोग पैदल आते थे और वो यहीं पर रुक जाते थे.
In the freezing cold January weather of Prayag.
और जनवरी का महीना बहुत ठंडी का मौसम रहता है प्रयाग में.
But what astonished him most is an American man.
एक अमेरिकन व्यक्ति के लिए सबसे आश्चर्य की बात क्या हुई?
Is how, although it was so austere, people looked so happy.
हालांकि इतनी तपस्या जीवन थी, लोग बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे.
Because they were so grateful to be in a holy place with holy people at a holy time.
क्योंकि वो इतने खुश थे कि एक पवित्र स्थान में पवित्र लोगों के साथ पवित्र समय पर एकत्रित थे.
He saw very old people who could hardly walk.
उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो बड़े बूढ़े थे, जिनको चलना भी मुश्किल था.
Walking hundreds of miles carrying their bags.
अपने बैग को उठाकर हजारों मील चलकर आ रहे हैं.
He saw sickly people, people with deformities.
उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति जिनके कई अपंग हो गए हैं.
And it seemed like nobody was complaining about anything.
और कोई किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं कर रहा था.
They were so grateful, so happy to get spiritual blessings.
वो इतने खुश थे, कृतज्ञ थे कि उनको आध्यात्मिक आशीर्वाद मिल रहा था.
And to offer their devotion.
और अपने भक्ति को अर्पण करने के लिए.
It was a culture shock for him.
ये उनके लिए एक सांस्कृतिक शॉक हो गया.
Why would people voluntarily come to a place where there is so much suffering? Well, then that's not say suffering, so much inconvenience and so much discomfort.
वो सोच रहे क्यों लोग इतना असुविधा और तकलीफ उठाकर यहाँ पर ऐसे स्थान पर आएंगे.
And they're not getting paid anything.
और उनको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा.
And they're not getting any higher position. Materially.
और भौतिक रूप से देखा जाए तो कोई उनको पोजीशन या पदवी भी नहीं मिल रही.
And they're so grateful. They're so happy.
वो इतने कृतज्ञ हैं और इतने सुखी हैं.
What struck him is the power of faith.
वो क्या चीज उसको प्रभावित हुई कि श्रद्धा की शक्ति.
From a sociological perspective, Kumbh Mela is about faith.
सामाजिक दृष्टि देखा जाए तो कुंभ मेला है ये श्रद्धा का वर्णन है.
We read in Srimad Bhagavatam long ago in another yuga when the demigods and the demons churned the ocean of milk.
हम पढ़ते हैं कि कैसे बहुत समय पहले देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया.
And from that churning Lord Vishnu appeared as Dhanvantari.
और समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु जो है धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए.
And he was holding a golden pot of amrita or nectar that gives one liberation from suffering and a long powerful lifetime.
और उनके पास एक सुनहरे का बर्तन था, कलश, जो कि लोगों को दुखों से मुक्ति देता था और लंबी आयु प्रदान करता.
But for those who are on a transcendental platform, the purpose of that nectar is to receive the grace of Krishna.
जो दिव्य स्तर पर हैं, उनके लिए अमृत का उद्देश्य है कृष्ण की दया को प्राप्त करना.
जय चतामम प्रपद्यन्ते तम स्थितायव भजाम्यहम्. Krishna tells, as you approach me or surrender to me, I will reveal myself accordingly.
कृष्ण कहते हैं कि जिस भावना से आप मेरे पास आओगे, मैं भी आपके पास उसी भावना से प्रकट होऊंगा.
And that holds true with the gifts that Krishna has given us.
और ये सत्य है सब भेंटों के लिए जो कृष्ण ने हमें दिए हैं.
If we have the consciousness of one who is infatuated by a lover.
अगर हमारी वो चेतना है जो कि प्रेम से प्रेमी से प्रभावित हुआ है,
When you see a rose, you think, let me take it and give it to my lover, and he or she will be very pleased to satisfy me.
हम अगर गुलाब देखते हैं तो सोचते हैं कि हम ये अपने प्रेमी या प्रेमिका को देंगे और वो प्राप्त करके बहुत संतुष्ट होंगे.
If we are a botanist, a specialist in categorizing different types of plants, we will see the rose and start thinking about the Latin words and what's its origin and where it began its growing.
और अगर हम पौधों का विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम किसी गुलाब को देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ये कौन से योनि का है और इसका क्या लैटिन का नाम क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे.
If we see the rose and we have allergies, then we'll just run away and start sneezing.
जिसको गुलाब से एलर्जी है वो उससे वहाँ से दूर भाग जाएगा और छींकने लगेगा.
If you're a devotee, you'll see a rose and think, see what Krishna has created.
और अगर आप भक्त हैं तो आप गुलाब को देखकर सोचेंगे कि देखो क्या है जो कृष्ण ने कैसे बनाया है.
Let me offer it to him with love.
मैं उनको प्रेम से अर्पण करना चाहूँगा.
And if you're an artist, you'll see the rose and just think about painting it and how to paint it and which paints to use.
और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप सोचेंगे कैसे उसकी एक पेंटिंग बनाई जाए, कौन से कलर उपयोग किए जाएं.
Similarly, when it comes to God, some people think of God, they become very afraid. I've done so many sins and he will punish me.
ऐसे भगवान के बारे में कुछ लोग जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं कि मैंने इतने पाप किए हैं, उनको डर लगने लगता है कि मुझे सजा मिलेगी.
Others will think, let me go to the temple and pray to God to give me more money or more health or more fame or to conquer my enemies.
और दूसरे व्यक्ति हैं वो बोलेंगे भगवान के पास जाके मैं और पैसा मांगू और बहुत धन मांगू और शत्रुओं को जीतने की शक्ति प्राप्त करूं.
And some simply want to offer their hearts with devotion.
और कुछ हैं जो भक्ति भाव से प्रार्थना करें.
So when Lord Vishnu appeared with this pot of nectar,
जब भगवान विष्णु इस अमृत के कलश को लेकर प्रकट हुए,
the demons wanted it to get more power to conquer others, to exploit them.
असुर जो है वो अमृत चाहते थे जिससे कि ज्यादा शक्ति मिले दूसरों का शोषण करने के लिए.
The demigods wanted it to protect them, to have the power to protect themselves from the demons so that they can expand their empires and enjoy while doing some service for the Lord.
और देवता जो सोच रहे थे कि हमें शक्ति मिले जैसे हम असुरों को पराजित करके हम साथ में भगवान की सेवा भी कर सकें.
But for a devotee, sees everything in creation, including the nectar, as the grace of Krishna.
और भक्त के लिए सब कुछ जिसमें अमृत भी आता है वो उसको भगवान की कृपा के स्वरूप मानता है.
Giving us an opportunity to serve.
जिससे कि हमें सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो.
So you see, everything we perceive in this world is according to our particular type of faith.
हर एक चीज को हम दुनिया में देखते हैं वो हमारी श्रद्धा के अनुसार होता है.
So the people come to Kumbh Mela with all different varieties of faith. But the simple, natural, common faith is that they are going to be connected to the grace of God.
लोग अलग अलग भाव से कुंभ मेला में आते हैं, लेकिन सरल भाव ये है कि मैं भगवान की कृपा के साथ जुड़ा जा सकूंगा.
Do you know why there's such police control here at Prayag when you go to take your bath?
हालांकि यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल है जब हम प्रयाग में जाते हैं स्नान करने के लिए.
You see, some people come to Kumbh Mela to prove that my religion is better than all others. My sect is supreme.
कुछ लोग इसलिए कुंभ मेला में आते हैं दिखाने के लिए कि मेरा संप्रदाय जो है वो दूसरे संप्रदाय से ज़्यादा श्रेष्ठ है.
It's very interesting. We explained the other day about when Dhanvantari came with the pot that the Asuras took it because they wanted to drink all of it.
Dhanvantari जब अमृत लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने छीन लिया क्योंकि वो उसको प्राप्त कर पीना चाहते थे.
And everybody knew that everyone was going to get some on their side and they weren't going to give a drop to their enemies, the demigods.
और वो जानते थे कि वो अपनी तरफ लेंगे और दूसरे देवताओं की तरफ नहीं देंगे.
But each one felt, I must have the first honor to drink the nectar.
हर एक सोच रहा था कि मुझे ये सम्मान मिले कि मैं पहला व्यक्ति हूँ इस अमृत को पीने के लिए.
What does that mean?
इसका अर्थ क्या होता है?
That means if I put myself first, that I put somebody else after me.
अगर मैं अपने आप को प्रथम मानता हूँ तो मैं दूसरों को अपने से पीछे बना देता हूँ.
So one took it. I am the most powerful. I am the most scholarly. I will drink it first. And he had the whole pot himself.
और पहला कहने लगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं पहले ग्रहण करूँगा.
This was an emergency. Another grabbed it out of his hands and said, I am more powerful than you. I have more property than you. I will drink it first.
दूसरा बोला कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास ज़्यादा संपत्ति है, मैं पहले ग्रहण करूँगा.
Another pulled it out of his hands.
और तीसरे ने उसके हाथ से भी खींच लिया.
And he boasted about his prowess and his accomplishments.
और वो अपने शक्ति का गर्व करने लगे.
I will drink it first.
मैं पहले पीऊँगा.
Nobody could drink it.
लेकिन कोई पी नहीं सका.
They would not allow anyone else to drink it, and they couldn't drink it themselves.
वो किसी और को भी पीने नहीं देते और उन्होंने स्वयं भी नहीं पिया.
Meanwhile, the demigods had no chance. The demons or the asuras, they had the chance to share it, drink it, and be invincible.
और ये जो असुर हैं उनके पास शक्ति होती कि वो पीते थे तो फिर वो अजीत बन सकते थे.
When they churned, they were a team.
जब वो मंथन कर रहे थे तो मिलजुल कर कार्य कर रहे थे.
But now that they got the prize, everyone was just thinking about me.
लेकिन जब उनको इनाम मिल गया तो वो अपने आप के बारे में सोचने लगे.
So they were fighting.
उनको डर था.
And ultimately, Mohini Murti came and settled the fight.
और फिर मोहिनी मूर्ति आई और फिर इसी तरह से बोले.
But that's another story.
वो एक दूसरी कथा है.
I'm not going to compare the two, but there have been instances over history of different sects who had bloody battles over which sect would bathe first during the Kumbh Mela.
इतिहास में हम देखते हैं कि कुंभ मेला में ऐसे कई बार संप्रदायों में बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो गई हैं कि कौन पहले स्नान करेगा.
We are the most ancient.
हम सबसे प्राचीन.
We are the most authorized.
मैं सबसे अधिकृत हम हैं.
We are the most learned.
हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे.
We are the most powerful.
सबसे शक्तिशाली हम हैं.
And different sects would come to Kumbh Mela with weapons.
और कई बार अलग अलग संप्रदाय हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर आते थे.
And they were mostly all the renunciates.
और मोस्टली उनमें सन्यासी होते थे.
Fighting over who is more renounced.
इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि कौन ज्यादा वैरागी है.
Because it was very prestigious that our sect will bathe first.
और ये प्रसिद्धि की बात होती कि हमारे संप्रदाय पहले स्नान करेगा.
And because there was bloodshed, there was deaths, there was injuries, innocent pilgrims are going, little ladies are going to get, and all of a sudden these tridents are flying by and they get killed.
आम जनता जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, अचानक हाथ में से सन्यासियों के हाथ से त्रिशूल गिर रहे हैं.
So the government had to settle it.
फिर गवर्नमेंट को निश्चय करना पड़ा.
They decided, they brought all the different sects together, who's going to go first, who's going to go second, who's going to go third, who's going to go fourth, and it was all very highly patrolled.
और उन्होंने निश्चय किया, सबको साथ में बुला के कौन पहले कौन दूसरे और ऐसे किस नंबर से किया जाए.
And they've become so expert.
और वो इतने एक्सपर्ट हो जाते.
Can you imagine? Riding around on those little horses, the police, and controlling all these tens and millions of people.
और आप कल्पना करें कि वो घोड़ों पर सवार होकर इतने सारे लाखों लोगों के बीच में जा रहे हैं.
And everyone knows when they go to Kumbh Mela to take their bath. Everyone knows, if they're thinking people, that there's a possibility they will be crushed to death.
और हर एक व्यक्ति जो कुंभ मेला में स्नान करना आता है उसको पता होता है एक थोड़ी संभावना है कि शायद मृत्यु हो जाएगी.
And can you imagine if the police were not controlling the crowds, how many people would be crushed to death?
और आप सोचिए अगर पुलिस वो क्राउड को वश नहीं कर रहे तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती.
But still, hardly anyone complains.
और फिर भी कोई शिकायत नहीं करते.
Because people feel so fortunate, so grateful, because they have faith.
लोग इतना अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा है.
These four places where the drops of nectar fell, Prayag, Haridwar, Ujjain and Nasik.
ये चार स्थान हैं जहाँ पर अमृत गिरे, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक.
During a special constellation that comes every 12 years, that nectar emerges.
12 साल में एक बार ऐसा मुहूर्त आता है कि जब वो अमृत प्रकट होता है.
Many spiritual teachers, they tell that to bathe at the Ganga here at Prayag or at Yamuna, a great, great blessing of grace and mercy comes to us.
कई लोग बताते हैं कि गंगा में या यमुना में स्नान करना एक बड़ा बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है जो प्राप्त होती है.
And to bathe where they meet together with the Saraswati at the Sangam, 100 times that grace comes to us.
और संगम पर जहाँ पर सरस्वती मिलती है तो सैकड़ों गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है.
And when we bathe at that Sangam during that 12-year Kumbh Mela time, 1,000 times more grace comes.
और अगर हम फिर उस समय स्नान करते हैं जब कुंभ मेला होता है तो 1,000 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है.
The Kumbh Mela is a very, very ancient gathering.
ये कुंभ मेला बहुत ही प्राचीन सम्मेलन है.
Shripad Shankaracharya very much promoted it to make it extremely popular throughout India.
Shripad Shankaracharya ne isko badhava diya, pure Bharat mein isko prasiddh banaya.
And his idea was similar to the idea of all of great acharyas.
Aur unka jo vichar hai wo sare dusre acharyon ki tarah hi tha.
There are two primary purposes of coming on this pilgrimage.
इस तीर्थ में आने के लिए दो प्रमुख उद्देश्य हैं.
The first is to bathe in that holy confluence and receive the purification, the cleansing of our karmas and our material attachments.
पहला है कि संगम में स्नान करना, शुद्धिकरण होना और सारे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना.
And receiving the blessings of the Lord.
और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना.
But along with that, the most important part of the pilgrimage of Kumbh Mela.
और दूसरा कुंभ मेला का सबसे महत्वपूर्ण भाग है.
Is to have darshan of holy people and to hear the knowledge that they teach.
साधुओं का दर्शन करना और उनसे पवित्र ज्ञान श्रवण करना.
In one beautiful prayer, Narottam Das Thakur sings.
एक सुंदर प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं.
But by bathing in the Ganga regularly, one gradually becomes free of all their sins.
गंगा में नियमपूर्वक स्नान करने से धीरे धीरे पापों से मुक्त करते हैं.
But by sincerely, respectfully, humbly approaching a great devotee of the Lord and seeing that devotee.
एक महान भक्त का दर्शन करने से और उनकी सेवा करने से.
One immediately gets the effect of bathing in rivers even many, many times.
और कई बार गंगा में नदियों में स्नान करने से ज्यादा फल वो साधु के दर्शन से हो जाता है.
Why is that?
ऐसा क्यों होता है?
Why is any place holy?
कोई स्थान पवित्र क्यों माना जाता है?
Because of the special grace that the Lord has manifested there.
क्योंकि भगवान ने वहां पर विशेष कृपा प्रदर्शित की है.
Prayag, Dhanvantari brought the nectar.
प्रयाग में धन्वंतरी अमृत लेकर आए.
And we read about it so many times in scriptures.
और शास्त्रों में हम अनेक बार इसके बारे में पढ़ते हैं.
In the Ramayana, when Ram, Lakshman and Sita left Ayodhya for their exile.
रामायण में जब भगवान रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर प्रस्थान किए.
They wanted to go to a place where no one would find them.
वैसे स्थान पर जाना चाहते थे जो शांत है.
We know the story. Kaikeyi somehow or other induced Dasarath Maharaj to, well, to succumb to her powers, to exile Ram.
आप जानते हैं रामायण की कथा कि कैसे कैकेयी ने किसी न किसी तरीके से दशरथ को बद्ध किया राम को वनवास में भेजने के लिए.
When Ram came early morning, the day when he was supposed to be coronated as the prince regent,
जब भगवान रामचंद्र जी सवेरे आए उस दिन जब उनको राजा घोषित किया जाना था,
Dasarath was laying on the floor of Kaikeyi's sulking room.
और जब उन्होंने देखा दशरथ जो है कैकेयी के कोप भवन में लेटे हुए हैं,
speechless,
बिल्कुल स्तब्ध हो गए हैं,
crying,
रो रहे हैं.
He couldn't say a word.
वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे.
It was Kaikeyi who said, "Your father, Dasarath, has exiled you to the forest for 14 years, and my son Bharat will become the next king."
और उन्होंने बताया कि कैकेयी ने कि तुम्हें को वनवास के लिए भेजा जा रहा है और मेरा बेटा भरत जो है वो राजा बनेगा.
Ram. He was not concerned with whether he's a king or where he's living. He was concerned with dharma.
Ram ko isse matlab nahi tha ki wo raja hain ki kahan reh rahe hain. Wo dharm ke siddhanton ko ke anusar jeevan bitana chahta.
He said, "Then I will leave today. Don't feel bad, father. I'm happy to leave."
To unhone bola ki main bahut khushi ke sath prasthan karunga aaj hi.
Dasarath said, "No, do not leave. You cannot leave."
दशरथ ने बताया नहीं 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 आप मत जाइए.
राम said, "To protect your promise, I must leave."
भगवान राम ने बताया कि आपके वचन की रक्षा करने के लिए मुझे जाना होगा.
And Sita and Lakshman would not stay behind, so they went with him.
और सीता और लक्ष्मण पीछे नहीं रहना चाहते थे तो वो उनके साथ में गए.
But so did everyone from Ayodhya.
और अयोध्या के सारे वासी साथ में चलने लगे.
Sumantra, the chariot driver, was taking Ram and Lakshman and Sita to a distant place, and everyone in Ayodhya was following behind.
Sumantra जो है जो रथ चला रहे थे वो सीता और राम और लक्ष्मण को ले जा रहे थे और सारे नागरिक वासी उनके पीछे पीछे चल रहे थे.
Even the very old people.
वृद्ध व्यक्ति भी.
They were falling and getting up and falling and getting up and trying to keep up with the chariot.
वो खड़े हो गिर रहे थे उठ रहे थे और रथ का पीछा करने का प्रयास कर रहे.
They proclaimed, "We will all go to the forest, and the forest will become Ayodhya."
हम सब जंगल में जाएंगे और वो जंगल अयोध्या बन जाएगा.
And let Kaikeyi and Bharat stay in Ayodhya alone, and it will become a forest.
और कैकेयी और भरत जो है वो अयोध्या में रहें और वो अयोध्या फिर जंगल बन जाएगा.
So this was breaking Ram's heart. He couldn't. They wouldn't leave him.
ये भगवान राम के हृदय को टूट रहा था कि वो कैसे उनको छोड़ सके.
He was saying, "Go back, go back, go back."
भगवान राम उनको बोल रहे थे आप सब वापस चले.
They were weeping, they were crying, "No, no, we cannot leave you. We are going to the forest with you for 14 years."
और वो रोने लगे बोले नहीं हम आपके साथ वनवास में चलेंगे 14 वर्ष के लिए.
Such faith, such love.
इतना प्रेम.
They were giving up their homes, their occupations, all their comforts, everything to be with Ram.
उन्होंने अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया भगवान राम के साथ रहने के लिए.
So Ram stopped for the night.
भगवान राम रात्रि के लिए वहीं पर विश्राम किए.
Lakshman made a little bed of grass for Sita and Ram.
लक्ष्मण ने एक पत्तियों की एक बिस्तर बनाया जिससे सीता राम.
Everyone in Ayodhya fell asleep because they were walking all day. They were tired.
अयोध्यावासी सारे विश्राम करने लगे क्योंकि वो सब थके हुए थे पूरी रात चलने.
In the middle of the Lakshman did not sleep. He was always guarding and protecting his beloved Sita and Ram.
Lakshman soye nahi, wo hamesha Sita aur Ram ki raksha karte.
Ram got up in the middle of the night.
Bhagwan Ram ardhratri mein uthe.
He saw Sumantra and Lakshman talking together.
उन्होंने देखा कि सुमंत्र और लक्ष्मण आपस में बातचीत कर रहे हैं.
Crying and crying at what had happened.
वो रो रहे थे जो हो गया उसके ऊपर.
And Ram said, very quietly, let's go now when everyone is sleeping.
बोले कि भगवान राम बोले अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए सब लोग सो रहे हैं.
They got on the chariot and then Ram said, go across this little river so that the tracks of the wheels of the chariot will not be seen.
भगवान राम ने उनको रथ चलाने को इस तरीके से बोला कि किसी को पता नहीं चले कि रथ किस ओर जा रहा है.
When the sun rose and everybody woke up to see Ram, he was gone.
जब सूर्योदय उठा और सूर्योदय हुआ और जब सब देखने लगे कि भगवान राम तो चले गए हैं.
Everyone in great vipralamba of love and separation began to follow the tracks of the chariot wheels.
सब लोग विप्रलम भाव में रथ के पहिए के निशान को ढूंढ रहे थे.
And they saw it led to a river and there were no more tracks.
और देखा वो निशान नदी के पास पहुंचे और उसके आगे कुछ निशान नहीं थे.
He was actually driving in the low in a low river.
और वो इस तरह से वो नदी की ओर निकल पड़े.
And weeping they all went back to Ayodhya.
और रोते रोते वापस अयोध्या में लौट कर आ गए.
And Ram said to Sumantra, now you go back with the chariot and tell Dasarath the news of Sita, Lakshman and myself, how we have entered the forest.
भगवान राम ने सुमंत्र से कहा कि अब आप वापस चले जाओ और महाराज दशरथ को समाचार दो कि कैसे हम तीनों अब वनवास में पहुंच गए हैं.
Sumantra said, no, I'm staying with you.
सुमंत्र ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ.
If I come back without you in the chariot to see that will cause the death of your father and practically break the hearts of everyone. Better I don't come back without you. Better they don't see that.
मैं बताया कि अगर मैं आपके बिना लौटूंगा तो सब सहन नहीं कर सकेंगे. ज्यादा अच्छा है कि मैं आपके साथ ही रहूं.
Ram ordered him to return.
और भगवान राम बोले सुमंत्र को नहीं तुम लौटो.
And they walked.
और वो गए.
They came to eventually Prayag.
और अंततः वो प्रयाग पहुंचे.
And at the confluence of the rivers Ganga, Saraswati and Yamuna, Bhardwaj Muni had an ashram.
गंगा यमुना और सरस्वती के संग पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम.
One of the great, great rishis of history.
इतिहास के एक महान ऋषि.
And he was so happy to see Ram.
वो भगवान राम को देखकर इतने प्रसन्न हुए.
But so broken hearted to hear how Ram was so unfairly exiled and beautiful Sita. Bhardwaj Muni was seeing the princess, the goddess of all creation, wearing coarse, hard, itchy tree bark as her clothes.
उनको इतना बड़ा दुख हुआ है देखकर कि भगवान राम को अन्यायपूर्वक वनवास में भेजा गया था और सीता महारानी जो हैं बहुत ही कठोर और बहुत ही दुखदायी वस्त्र धारण किए हुए थे.
It was personally designed and fashioned by Kaikeyi.
वो वस्त्र जो है कैकेयी ने अपने निजी रूप से उसको बनाया था.
Bhardwaj Muni said, this is the holy place. Stay with me in my ashram and live for the next 14 years in peace and happiness.
भरद्वाज ऋषि ने कहा यह एक पवित्र तीर्थ स्थान है और आप बड़े सुख के साथ अगले 14 वर्ष यहीं पर बिताएं.
Bhardwaj offered his body, his mind, his life, his everything in the service of Ram.
भरद्वाज ऋषि ने अपना शरीर मन और वचन सब कुछ प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण किया.
All my disciples are yours.
मेरे सारे शिष्य आपके ही हैं.
Everything is for you.
सब कुछ आपके लिए ही है.
We will feed you the best forest fruits and roots and we will all be together.
हम आपको अच्छे फल खिलाएंगे और हम सब साथ में बड़े खुशी के साथ रहेंगे.
Ram, Lakshman, Sita took their bath here at Prayag.
भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण यहाँ पर कुछ समय रहे.
And Ram proclaimed, this is Prayag Raj. the king of all holy places.
भगवान राम ने कहा कि ये प्रयाग जो है ये तीर्थ राज है, सारे तीर्थों का राजा है.
But he told this loving devotee that this is such a famous place.
उन्होंने कहा कि ये इतना मशहूर स्थान है.
That the citizens of Ayodhya will find me here.
अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ.
And they'll all come and live here.
और वो सब यहाँ पर आकर रहने लगेंगे.
Then it will not be a hermitage; it will become a city.
और वो फिर कुटिया नहीं रहेगी, वो एक शहर बन जाएगा.
And they will not. I can't allow that. I must go somewhere where they cannot find me.
उन्होंने बताया भरद्वाज ऋषि को, मुझे ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर वो मुझे नहीं खोज सके.
Ram told Bharadvaj, "Please tell me a place which is very quiet and very beautiful." And very natural.
हमें ऐसा स्थान बताओ जो बहुत सुंदर हो, शांत हो और स्वाभाविक हो.
A place that is occupied only by very pure-minded saints and rishis who worship the Lord.
ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ साधु संत जो भगवान की आराधना करते हो वही रहते हैं.
A place that cannot be found.
एक स्थान जो खोजा नहीं जा सकता.
And Bharadvaj said, here at Prayag, he said, I know just the place.
यहाँ पर प्रयाग में भरद्वाज ने जवाब दिया, मुझे ऐसा स्थान मालूम है.
There is a mountain named Chitrakoot.
एक पर्वत है जिसका नाम है चित्रकूट.
And there are pages and pages of Sri Ramayana where Bharadvaj is describing the beautiful scenery of Chitrakoot.
रामायण में कई कई पन्ने हैं जो कि चित्रकूट की सुंदरता का वर्णन करते हैं.
एंड आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग्स श्री राम क्रॉस्ड द त्रिवेणी एंड बाय फुट वेंट टू द चित्रकूट माउंटेन.
भगवान राम ने फिर त्रिवेणी नदी पार करने के बाद में पैदल चलते हुए चित्रकूट में पहुंचे.
Later, Bharat came to Prayag.
बाद में भरत भी यहाँ पर प्रयाग में आए थे.
He was trying to find Ram to bring him back to Ayodhya because Bharat decided, I am not going to allow my evil mother's scheme to fructify. I will stay in the forest for 14 years and Ram will return to be the king.
बाद में भरत यहाँ पर आए क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जंगल में रहूँगा और भगवान राम फिर वापस लौट कर राजा बने.
And he also spent time with Bharadvaj Muni here.
वो भी यहाँ पर कुछ समय के लिए भरद्वाज ऋषि के साथ रहे थे.
So this place has such a special history.
हम देखते हैं कि ये स्थान का इतना विशेष इतिहास है.
And as we have explained yesterday,
जैसे हमने कल समझाया,
for us, it is one of the most holy of holy places because it is the place that Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Sri Rupa Goswami.
हमारे लिए इसलिए पवित्र है क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश प्रदान किया.
With your permission, I'd like to tell a part of the story again.
आपकी अनुमति के साथ मैं वो कथा बताना चाहूँगा.
रूप गोस्वामी एंड हिज ब्रदर श्री बल्लभा, दे लेफ्ट देयर किंगडम, देयर पैलेसेस एंड ऑल देयर वेल्थ टू मीट लॉर्ड चैतन्य इन वृंदावन.
रूप गोस्वामी और अनुपम अपनी सारी संपत्ति को त्याग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन चल पड़े.
सनातन गोस्वामी had to stay to finish some responsibilities.
सनातन गोस्वामी को रुकना पड़ा क्योंकि उनके कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी थी.
But in that time he was put in an underground prison cell by the Nawab Husain Shah.
उस समय के दौरान सनातन गोस्वामी को नवाब ने जेल में डाल दिया.
रूप गोस्वामी sent him 10,000 gold coins to bribe the jailkeeper.
रूप गोस्वामी ने उनको 10,000 सोने के सिक्के भेजे जिससे कि वो जेल कीपर को देकर बाहर निकले.
on their way to Vrindavan, they came here.
Vrindavan jaane ke samay raste mein Prayag pahunche.
Just close by, even today, is the temple of Veni Madhava.
Yahan se bahut paas mein hi ek mandir hai jiska naam hai Veni Madhava.
A beautiful temple of Madhava or Krishna.
Jo ki Krishna ya Madhav ka bahut sundar mandir hai.
Stands with four arms blessing all of his devotees.
Jo chaturbhuj roop hai aur sare bhakton ko aashirwad de rahe hain.
Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna in the role of his own devotee with the love of Sri Radha, when he saw Lord Veni Madhava, in great ecstasy he began to chant the holy names and dance.
Jab Chaitanya Mahaprabhu, jo ki Krishna hai, Srimati Radharani ke bhav mein Veni Madhav ke darshan karke bade bhav vibhor hokar Krishna ke pavitra naam gaane lage.
Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us by his own example that in this Sankirtan, as our love of Krishna awakens, the natural quality of our heart is to share that love in a spirit of selfless, unconditional compassion for all beings.
Chaitanya Mahaprabhu ne sikhaya hai, jaise hamara prem aage badhta hai, hum niswarth bhav se is prem ko sabko baantne ke liye utsuk hote hain.
He was so beautiful as he was dancing with his beautiful golden form that dozens of people came.
Wo itne sundar the ki jab nritya kar rahe the to kafi sare log unka dekhne ke liye aaye.
And the word spread. And there were hundreds, thousands, tens and thousands, hundreds and thousands of people were assembled at Veni Madhava temple.
Aur dheere dheere sankhya badhne lagi, hajaron, lakhon, karonon log Veni Madhav ke samne ekatrit hue.
As Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing with tears pouring from his eyes like the Ganga and the Yamuna, he raised his long golden arms and cried out to everyone, Hari Bo!
Hari Bo! Chaitanya Mahaprabhu apni lambi bhujaen upar karke sabko ekatrit karke bolne lage Hari Bol bolne ke.
And everyone, it filled all directions with a tumultuous sound of hundreds and hundreds and thousands of voices as everyone raised their arms loudly chanting the Mahamantra.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Rupa Goswami and his brother came to Prayag, and all of a sudden they saw hundreds and thousands of people chanting loudly the names of Krishna. Everyone was crying. Some people uncontrollably were rolling on the ground in ecstasy while they chanted the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Aur Rupa Goswami ne dekha ki unke sang ke prabhav se hajaron lakhon log ga rahe hain, naach rahe, koi jameen mein khel rahe hain aur ye Hare Krishna mantra ga rahe hain.
They understood Lord Chaitanya is here.
Ve samajh gaye Shri Chaitanya Mahaprabhu ke bhav.
And they came closer and saw his beautiful dance.
Aur paas mein aakar unke roop ka darshan kiya.
Kaviraj Goswami describes how in all of the history of Prayag, and in the Vedas, there are histories for millions of years of Prayag, there is no event where the three rivers flooded the entire city.
Kaviraj Goswami batate hain ki hajaron hajaron saal ke itihas mein teenon nadiyon mein kabhi bhi Prayag mein kabhi aisa nahi hua ki itni baadh aa jaye ki pura Prayag pani se bhar jaye.
But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came here, he flooded the entire area with prema bhakti, love for Krishna.
Lekin jab Chaitanya Mahaprabhu aaye, unhone ek baad paida ki aur wo hai prema bhakti ki baad.
Through the sankirtan of the holy names.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Is tarah se unhone ek sankirtan baad shuru ki Hari Naam.
Hours and hours and hours went by. Kaviraj Goswami says, I cannot explain what an extraordinary pastime this was at Prayag.
और कविराज गोस्वामी बताते हैं इतने सारे वर्ष इतने सारे घंटे बीत गए इतनी अद्भुत लीला हो रही थी.
And then a Deccan Brahmin invited Sri Chaitanya Mahaprabhu for lunch at his house.
और एक दक्षिण ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया.
The Lord sat in a secluded place.
और फिर भगवान एक निर्जन स्थान में बैठे.
Rupa Goswami understood that the Lord had already been to Vrindavan and now he was on his way back to Puri.
Rupa Goswami समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस लौटे थे और पुरी की तरफ आ रहे.
From a distant place.
दूर से.
They humbled themselves by taking clumps of grass and putting it between their teeth.
उन्होंने घास का तिनका लिया और वो प्रणाम करने लगे.
This is a gesture of totally humbling oneself.
ये एक तरीका है अपने आप को पूर्ण नम्र बनाने का.
And they prostrated themselves on the ground, crying in humility.
और वो जमीन पर प्रणाम करने लगे नम्रता के साथ.
Lord Chaitanya saw them and he came to them and said, Rupa, Sri Ballabha, stand up.
Chaitanya Mahaprabhu ne aake un dono ko bola, utho, utho.
The Lord personally embraced Rupa Goswami.
Aur Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami ko aalingan kiya.
And then placed his lotus feet on Sri Rupa's head.
और अपने चरण कमल रूप गोस्वामी के सिर के ऊपर.
He said, Lord Krishna's mercy has saved you from a materialistic situation.
कृष्ण की कृपा ने आपको भौतिक स्थिति से बचाया है.
And it was here at Prayag that Rupa Goswami wrote, he recited a prayer which is even today, almost 500 years later, one of the most glorious expressions that describe who is Lord Chaitanya.
और रूप गोस्वामी ने यहाँ पर एक सुंदर श्लोक रचना की जो आज भी 500 साल में बताती है कि चैतन्य महाप्रभु की क्या महानता है.
नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेशे नमः. That you are Krishna himself.
आप स्वयं श्री कृष्ण हैं.
Of all avatars of Krishna, in this form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, you are most merciful, you are most munificent.
आप सबसे ज्यादा दयालु हैं और सबसे ज्यादा उदार हैं.
Because you are freely giving love for Krishna, love for yourself, to everyone, to anyone, without discrimination, through the simple process of the chanting of the holy names. Not only giving love of Krishna, you are giving the love of the gopis of Sri Vrindavan Dham, the highest, the sweetest, most intimate love for Krishna.
आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं न केवल साधारण कृष्ण प्रेम बल्कि गोपियों का प्रेम वृंदावन के भाव का प्रेम.
It was the month of Magh.
ये माघ का महीना था.
And many, many people were here in Prayag at that time.
उस समय यहाँ पर बहुत सारे लोग थे.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu made a little place for himself right at the confluence of the three rivers.
महाप्रभु ने अपने आप के लिए संगम के किनारे एक जगह बनाई.
And gave Rupa and Ballabha, Sri Ballabha, a place just near his.
और उसी के पास रूप और बल्लभ को भी उन्होंने स्थान दिया.
But because the crowds were so great, one day Lord Chaitanya took Rupa Goswami very close to where we're sitting today.
Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami ko ek sthan par le gaye jo bahut paas mein hai yahan jahan baithe hain usse.
The Dashashvamedha Ghat.
Jiska naam hai Dashashvamedha Ghat.
There he embraced Rupa Goswami.
वहाँ पर उन्होंने रूप गोस्वामी को गले लगाया.
Because he saw the humility, the sincerity, the absolute dedication of Rupa Goswami.
उन्होंने रूप गोस्वामी की प्रामाणिकता और नम्रता को देखा.
He empowered him to understand with realization everything he was about to speak.
रूप गोस्वामी को शक्ति प्रदान की कि जो भी वो बोल रहे हैं उनको समझ सकें साक्षात्कार के साथ.
He spoke to Rupa Goswami at Dashaswamedh Ghat for 10 days.
10 दिन के लिए उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश दिया.
He began his discussion.
अपनी चर्चा की शुरुआत की.
That the topic of Krishna and devotion to Krishna is vast like an unlimited ocean.
कृष्ण और कृष्ण भक्ति का विषय एक विशाल सागर के समान है.
I will describe to you only a single portion of one drop from that ocean.
मैं आपको उस सागर से एक बूंद का वर्णन करूंगा.
But that little portion of a drop could flood the entire cosmic manifestation with ecstatic love of God.
और वो एक बूंद जो है पूरे ब्रह्मांड को जो है प्रेम से भर सकती है.
He told that there are 8,400,000 species of life.
उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियां हैं.
And that this jiva or the spirit soul, which is 1/10,000 the size of a tip of a hair, the living force, part and parcel of Krishna, when forgetful of its true nature, travels through these various species, through various universes.
और वो जीवात्मा जो है भगवान को भूल जाने के बाद 84 लाख योनियों में अलग अलग जगह पर भ्रमण करता है.
There are two categories of living entities, unmoving and moving.
दो प्रकार के प्राणी हैं, चर और अचर.
Plants are unmoving.
पौधे हैं उनको अचर कहा जाता
है. And the moving are the fish and the birds and the insects, the reptiles, the animals. And he explained, it is very, very rare to attain the human form of life.
उन्होंने बताया चर प्राणियों में पक्षी हैं, जानवर हैं, मानव हैं, बहुत बहुत दुर्लभ है कि किसी को मानव का शरीर प्राप्त होता है.
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे धरह एव सिंदुरे. And in this rare human life, the rarest of all things is to have the association of great souls.
और इस मानव जीवन में सबसे दुर्लभ है महात्माओं का संग मिलना.
ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज. Because such a great soul, a guru, can awaken within our heart the seed of bhakti.
ऐसे महात्मा जो है हमारे हृदय में भक्ति के बीज को जागृत कर सकते हैं.
There is nothing more precious in all of existence than that seed of devotion.
पूरे सृष्टि में उस भक्ति के बीज से बढ़कर और कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं.
And along with the seed, the great souls teach us how to become a gardener and water that seed.
और महात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे उस बीज का माली बनना और कैसे उसका सिंचन करना.
The water is hearing and chanting the glories of the Lord and the names of the Lord.
Pani hai bhagwan ke mahima ka shravan aur kirtan karna aur unke naam ka shravan kirtan.
Associated with saintly people and rendering seva or selfless service.
Vaishnavo ki seva karna aur unka sang karna niswarth bhav se.
Through following the 9 processes of devotional service and the association of devotees, that seed grows into a creeper.
जब नवविद्या भक्ति का अभ्यास किया जाता है भक्तों के संग में तो बीज जो है एक लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है.
But he described we have to be very careful to protect that creeper.
और हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम इस लता की रक्षा कर सकें.
Because inevitably weeds will grow along with it.
क्योंकि उस पौधे के साथ साथ अवांछित दूसरे पौधे उग जाते हैं.
And the weeds may look just like the creeper and will be watering the weeds and the weeds will wrap around and choke the creeper of devotion.
ये जो दूसरे अवांछित पौधे हैं जो मुख्य पौधे भक्ति को पूरा उसका जल लेकर और उसको अंत में उसको नष्ट कर सकते हैं.
And the weed will grow into a tree.
और वो जो दूसरे पौधे हैं वो एक पेड़ के रूप में बन जाएंगे.
And we will think, I am very advanced.
और हम सोचेंगे कि मैं भक्ति में
बहुत आगे हूँ. I am better than you.
मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ.
I have rights over you.
मुझे आपके ऊपर अधिकार है.
He described what the weeds are.
और उन्होंने बताया कैसे बीज जो पौधे उगते हैं.
He said there are limitless weeds.
उन्होंने बताया असंख्य प्रकार के उपशाखाएं हैं.
So many varieties. We don't have time to discuss so many.
इतने सारे हैं हमारे पास उतना समय नहीं है वर्णन.
Some of them was desire for prestige.
एक है प्रतिष्ठा.
The desire for mundane profit.
और भौतिक लाभ की इच्छा.
Envy.
ईर्ष्या.
Greed.
लोभ.
Arrogance.
अभिमान.
The tendency to criticize and find faults with others.
दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति.
This is a very serious weed.
ये बहुत ही गंभीर है.
And the more it grows, the more we think that my right to find faults with others puts me in a superior position to them.
और जितना ये उगता है हमें लगता है कि मेरे को अधिकार है कि दूसरों में दोष देखने का.
It's just ego.
ये अहंकार है.
The weed of ego and envy.
ये अहंकार और ईर्ष्या की उपशाखा
है. And he described that in this little garden where the creepers just starting to grow, there's a mad elephant. If we let that mad elephant in the garden, he will create devastation.
और यहाँ पर एक पागल हाथी है जो अगर पागल हाथी को भेजा जाए तो पूरा नष्ट कर देगा.
And that is criticizing and trying to undermine through offenses another devotee.
और वह दूसरे वैष्णव के प्रति अपराध करना.
So we must be very careful about these weeds and this mad elephant.
हमें इस पागल हाथी और ये उपशाखाओं के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए.
But nobody thinks I'm letting a mad elephant in.
किसी को पता नहीं चलता कि पागल हाथी आ रहा है.
Due to the weed of the ego, we think I'm actually I am defending dharma.
और इस अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ.
I am doing what is right.
मैं वही कर रहा हूँ जो सत्य.
I am great. I am empowered.
मैं महान हूँ और मुझे शक्ति मिली है.
While the mad elephant is destroying our propensity for pure devotional service.
और ये पागल हाथी शुद्ध भक्ति करने की इच्छा को नष्ट कर रहा है.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, you also have to build a little fence around this weed to protect it from immoral activities.
और उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसी जाली उसके आसपास लगानी चाहिए जिससे अनैतिक कार्यों की क्रियाओं से हम बच सकें.
And if we are sincere in this way and go on hearing and chanting, the creeper will grow and grow and grow.
और अगर हम प्रामाणिक रूप से श्रवण कीर्तन करते रहे तो पौधा उगेगा और उगेगा और उगेगा.
Bhur bhuva swa, it will grow beyond this earth planet and it will go beyond swargaloka, maharloka, janaloka, tapaloka, go beyond brahmaloka, it will cross the viraja river and enter into the spiritual sky.
और फिर ये पौधा सब लोगों को पार करते ब्रह्मलोक विरजा नदी को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा.
And there it will enter into the Brahma Jyoti, Brahman, the abode of liberation for the impersonal philosophers.
और वहाँ से वो ब्रह्म ज्योति की पहुँचेगा जहाँ पर निर्विशेषवादी जाते हैं.
There is no dualities.
जहाँ पर द्वंद्व नहीं है.
There is no birth. There is no death. There is no suffering.
जहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं है और
कोई दुख. There is no anxiety.
और नहीं कोई चिंता.
There is no thought.
कोई विचार ही नहीं.
There's just pure existence.
बस शुद्ध सत्व है.
But if we go on watering the creeper, it will grow, grow, grow beyond the Brahma Jyoti to Vaikuntha, the abode of the Lord.
और अगर हम उसको जल डालते रहें तो वो और आगे जाकर वैकुंठ तक पहुंच जाएगा.
And it will keep growing till it reaches the highest, most intimate of all abodes of the Lord, Goloka.
और वो सबसे ज्यादा ऊंचे लोग गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएगा.
And that creeper will reach the lotus feet of Gopinath Krishna.
और वो लता जो है गोपीनाथ के चरण कमल तक पहुंच जाएगा.
And then a ripe, luscious fruit will blossom.
और वहां पर एक सुंदर फल परिपक्वित होगा.
It is the fruit of prema, ecstatic love.
वो कृष्ण प्रेम का फल है.
Offered at the feet of Krishna.
और वो कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किया जाए.
Krishna allows the gardener to taste the sweetness of that fruit.
कृष्ण जो है वो माली को उस फल का आस्वादन करने का अवसर देते.
And one is supremely satisfied.
और ये परम संतुष्टि प्रदान करने वाला है.
And Lord Chaitanya said, all of this is happening while we're right here where we are just doing our hearing and chanting.
और ये सब तब हो रहा है जब हम यहाँ पर बैठकर ही श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं.
We may be in Prayag, we may be in Vrindavan, we may be in Switzerland, we may be in America, we may be in Mumbai, we may be in Lithuania. I've met so many people today. Wherever we may be, just by whether we're grihe tako vane tako sada hari pole tako
grihe
tako vane tako sada hari pole tako
sukhe dukhe bhulo na ko padne hari naam karo re
sukhe dukhe bhule na ko padne hari naam bolo re
gai gaura madhu sware
gai gaura madhu sware.
Whether one is a grihastha living at home with a husband and a wife and children and an occupation and bills to pay and all of that, or whether one is a sannyasi traveling around the world, or whether one is a babaji living in a forest, or whether it's a brahmachari sleeping on the floor in an ashram, doesn't matter. If we just go on with this hearing and chanting and living with humility and character, wherever we are, this is the experience within our heart. This creeper of devotion is going beyond all the planets of the material existence, going beyond the Brahma Jyoti, going beyond Vaikuntha, going to Goloka Vrindavan, and we taste the fruit here. The fruit that is being offered to Krishna in the spiritual world.
चाहे हम गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी हों या सन्यासी हों या वानप्रस्थ हों, किसी भी दुनिया के भाग में हों, अगर हम श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं तो हमारे हृदय में ये फल अंकुरित होता है और धीरे धीरे हम ये कृष्ण प्रेम का फल का आस्वादन कर सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए.
श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन द ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति की महिमा का गान किया.
जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास. That our eternal constitutional nature is we are eternal servants of Krishna.
Hamara swabhav hai ki hum Krishna ke nitya das hain.
And the nature of that service is an offering of pure love.
Aur hamara safalta hai ki prem mein bhagwan ko arpan kare.
Nothing else could satisfy the soul completely.
कोई और चीज आत्मा को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता.
He quoted to Rupa Goswami, Muktanam api siddhanam narayana parayana sudurlabha prasantatma kotishvapi mahamune. The meaning of this verse is that there are many people who may achieve mukti, liberation from all dualities, total peace, no more birth or death.
बहुत से लोग हैं जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं.
And there may be many people who achieve siddhis.
और कई हैं जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं.
Where they connect with the Paramatma in such a way they can perform supernatural powers.
परमात्मा से संपर्क कर लेते हैं कि बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं.
Live for hundreds and hundreds or even thousands of years.
वो सैकड़ों और हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं.
Not even eat, just get fully nourished, just getting nutrients from the air through prana, and not even getting thin.
और वो प्राण से ही कोई चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और पतले भी नहीं होते, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं.
Chanting mantras and being able to dematerialize and rematerialize any object from anywhere in the world.
और ऐसे मंत्र प्राप्त बोलना कि इससे कोई भी दुनिया की कोई भी चीज कहीं से भी प्राप्त कर सके.
Traveling on a sun ray to anywhere you want.
सूर्य की किरण पर जहां पर आप चाहें वहां जा सकते हैं.
The capacity to control people's minds and to control their lives, and they become like helpless puppets to you.
लोगों के मन को नियंत्रित करना जिससे वो आपके हाथ में कठपुतली बन जाएं.
To become very large, to become very small.
बहुत बड़े बन जाना या बहुत छोटे बन जाना.
These are some of the mystic cities.
ये कुछ योगिक सिद्धियां हैं.
This verse that Lord Chaitanya quotes from the Vedas, even many people who have all these mystic cities and all the many people who have achieved mukti, liberation.
बहुत सारे लोग जिनको योगिक सिद्धियां मिली हैं और मुक्ति भी प्राप्त किए हैं.
The rarest thing is Narayana Parayana.
सबसे दुर्लभ है नारायण परायण.
To be a pure, loving servant of the Lord.
भगवान का शुद्ध प्रेममय सेवक बनना.
Because in that love, of getting the personal love of Narayan, and giving Narayan all of our love, is where the true natural satisfaction of the soul is to be found.
भगवान नारायण से प्रेम करना और उनके प्रेम को स्वीकार करना, इसी से आत्मा को अंततः संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है.
And then Lord Chaitanya describes how in Vrindavan, the love of Krishna manifests.
और फिर वो बताते हैं कैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है.
Said in Vaikuntha, the love is Aishwarya Bhav. Pure, unmotivated, uninterrupted love for the Lord as the supreme absolute truth, the King of all kings.
बताते हैं कि किस प्रकार से वैकुंठ भगवान का जो भाव है वो ऐश्वर्य भाव से है. भगवान को सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है.
Beyond that experience is when the love becomes so deep and so intimate that Krishna himself, by his yogamaya powers, covers his supremacy so that we could love him as a friend, as a child, or as a lover.
और उससे ऊंचा है कि जब भगवान अपने इस ऐश्वर्य को ढक देते हैं जिससे भक्त उनको अपने मित्र और पुत्र और प्रेमी के रूप में प्रेम कर सकता है.
सक्य रास, कृष्णस फ्रेंड्स, दे गो टू द पास्चर्स एवरी डे विद कृष्ण टू हर्ड द कैल्व्स एंड लेटर द काउज.
सक्य रस में भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं.
And they play with him in so many ways.
और अनेक रूप से बहुत सारे खेल खेलते हैं.
One place, it is described that they're all sitting and eating together on the bank of Yamuna.
ये बताया गया कि वे सब मिलकर यमुना के किनारे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं.
They're all showing each other the different items that their mothers prepared for them.
और सब दिखा रहे हैं कि मेरी माता ने आज क्या मुझे लिए बनाया है.
And they're taking a bite out of it and saying, "Oh, Krishna, this is so nice."
और वो उसमें मुंह से चबाकर कृष्ण को देते हुए कहते हैं,
"Would you like to taste it?"
क्या आप इसका आस्वादन करना चाहेंगे?
They take it out of their mouth and give it to Krishna.
वो उनके मुंह से निकालकर कृष्ण को अर्पण करते हैं.
And Krishna eats it.
और कृष्ण उसको स्वीकार करते
हैं. Oh, this is so nice.
वो कहते हैं, कितना
सुंदर. And then another one says, "Oh, well, taste mine." And then Krishna.
दूसरा व्यक्ति भी निकाल कर दिखाता है कि
कृष्ण taking the prasad of his devotees.
कृष्ण अपने भक्तों के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं.
And he's enjoying it more than great kings offering many many preparations and offering it to the supreme lord as the king of all kings.
और कृष्ण इन भोगों में ज्यादा आनंद लेते हैं बजाय इनके कि जो उनको राजा के भाव के रूप में अर्पण किया जाता है.
And one time
One of the boys said, Krishna, this prasad is so nice. I'm not going to tell you what it is, but close your eyes and open your mouth.
और एक मित्र बोले कृष्ण बहुत अच्छा प्रसाद है अपने आंखों को बंद करके मुंह खोलो
कृष्ण closed his eyes and opened his mouth
कृष्ण अपनी आंखें बंद करके मुंह खोला
everyone was watching
हर कोई देख रहा
and the boy plucked a flower
और उसने एक फूल चुन लिया
and tossed a little flower in Krishna's mouth
और कृष्ण के मुंह में फूल डाल दिए
and flowers are not sweet they're quite bitter actually
और फूल जो है स्वादिष्ट मीठे नहीं होते
so Krishna went to eat it and He bit into a flower, and then he made a very, very transcendentally beautiful cringe on his face.
और फिर कृष्ण ने बहुत ही बड़ा अद्भुत चेहरा प्रकट किया.
And everyone laughed and clapped. And Krishna ate flower, and he was Krishna. He smiled and laughed.
सब लोग ताली बजाने लगे.
And they wrestled with Krishna.
और कृष्ण से कुश्ती करना.
Krishna, I can beat you.
कृष्णा मैं आपको पराजित
करूंगा no no I will beat you
बोले नहीं मैं आपको पराजित
and then they wrestle
और दोनों आपस में कुश्ती
लड़े and Shri Rama beats Krishna
और Shri Rama कृष्णा को पराजित
and then Krishna has to carry Shri Rama on his shoulders to show everyone that he has defeated me
और फिर Shri Rama जीत जाते हैं और कृष्णा उनको अपने कंधे पे ले जाते
and gopis the older gopis they chastise Krishna
और जो वृद्ध गोपी हैं वो कृष्ण को डांटते हैं
रघुनाथ दास गोस्वामी इन वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल लिटरेचर्स ऑन वृंदावन ही सेड मिलियंस एंड टेंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर प्लेजर कृष्ण गेट्स देन हियरिंग द ग्रेटेस्ट मोस्ट एनलाइटेंड स्कॉलरली ब्राह्मण्स एंड सेजेस चैंटिंग वैदिक हिम्स ही गेट्स टेंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर प्लेजर हियरिंग द ओल्ड ब्रिजवासी वुमेन चैस्टाइज एंड क्रिटिसाइज हिम
रघुनाथ दास बताते हैं कि जब गोपियां कृष्ण को डांटते हैं तो उनको ज़्यादा आनंद मिलता है बजाय इसके कि जो वैदिक मंत्रों से उनका गुणगान कर रहे हैं
Because with such unconditional love,
और ये बिना किसी शर्त के प्रेम है
We don't find that in Vaikuntha.
यह प्रेम वैकुंठ में नहीं दिखाई पड़ता
Now, Vaikuntha is supremely worshipable.
वैकुंठ जो है वो पूजनीय स्थान है
But in Vrindavan, Krishna isn't worshipped. Krishna is played with.
Vrindavan में कृष्ण की पूजा नहीं की जाती, बल्कि कृष्ण के साथ खेलते हैं.
That is Brajbhumi.
प्रेम के कारण.
And the culmination, the comprehensive, inclusive bhava that includes all other bhava is the love of the gopis.
और सबसे ऊंचा प्रेम जो है वो गोपियों का प्रेम है
एंड दैट लव एंड ऑल लव इज ओरिजिनेटिंग इन द लव ऑफ श्री राधा द महाभाव
और वो सारा प्रेम जो है वो महाभाव वो श्रीमती राधा रानी से प्रकट होता है
राधा भाव दूती सुपालितम नौमि कृष्ण स्वरूपम श्री चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण विद द लव एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्री राधा
श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जो कि राधा रानी के प्रेम और वर्ण को स्वीकार किए हैं
By speaking here at Prayag to Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu is tasting the sweetness of Radha's love.
यहाँ पर रूप गोस्वामी को बतलाते हुए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं
By describing it to his dear beloved devotee.
अपने प्रिय भक्तों को इसका वर्णन करते हुए
And it is from Sri Radha's heart that this love is flooding the whole of Prayag through Sri Chaitanya Mahaprabhu's words.
और ये राधा रानी का प्रेम जो है पूरे प्रयाग में बाढ़ पैदा कर रहा है महाप्रभु के शब्दों के द्वारा.
Then Lord Chaitanya told Rupa Goswami, after these 10 days, you should go to Vrindavan.
चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोले कि 10 दिनों के बाद आप वृंदावन जाना.
And I will take a boat to Varanasi.
और मैं नौका से यहाँ से वाराणसी की ओर प्रस्थान
रूप गोस्वामी फॉलोड श्री चैतन्य महाप्रभु टू द बोट
रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पीछे नौका तक पहुंचे
एंड ही सेड आई विल गो टू वाराणसी विद यू
और बोले मैं भी आपके साथ वाराणसी आना चाहता हूँ
प्लीज अलाउ मी टू कम विद यू
कृपया मुझे अपने साथ ले चलो
आई कैन नॉट लिव इन सेपरेशन फ्रॉम यू माय लॉर्ड
मैं आपके बिना नहीं जा सकता
Lord Chaitanya saw the emotion of Rupa Goswami.
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के भाव को देखा.
He said, "You must go to Vrindavan. Sanatan Goswami has already been freed from prison, and soon he will meet you there.
उन्होंने रूपा गोस्वामी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और सनातन गोस्वामी जेल से मुक्त हो गए हैं वो बहुत जल्दी आपको मिलेंगे
And he gave Rupa Goswami 4 instructions.
और रूप गोस्वामी को चार आज्ञाएं प्रदान की।
What I have spoken to you in the last 10 days.
जो मैंने 10 दिन बोला है।
Expand on it.
उस पर विस्तार करिए।
And take that essence.
और उस सार को
ग्रहण। And extract from all the Vedic literatures this very essence I have given you.
जो मैंने सार दिया वो सारे वैदिक शास्त्रों से ग्रहण करो।
And write literatures to be the very foundation of the teachings of pure bhakti.
और ऐसे साहित्य लिखो जो कि शुद्ध भक्ति का आधार बन सके।
And rediscover, I will reveal to you the places of Radha and Krishna's divine leelas in Vrindavan. Excavate them and make it a holy place of pilgrimage.
राधा और कृष्ण के जो लीला के स्थान है वो मैं आपको प्रकट कराऊंगा आप उनके खुदाई करो और उनको तीर्थ बनाओ
And there are ancient hidden deities from long before the time of Krishna. Find them, discover them, build temples for them and establish proper standards of puja.
और कई विग्रह हैं जो कृष्ण के समय के हैं जो लुप्त हो गए हैं उनको खोजिए उनकी स्थापना करिए मंदिर और उनके मंदिर उनकी पूजा के विधान बनाइए
एंड इन योर ओन लाइफ एग्जाम्प्लीफाई व्हाट इज अ परफेक्ट वैष्णव इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर
और अपने स्वयं के उदाहरण से सिखाइए कि संन्यास आश्रम में कैसे वैष्णव को रहना है
एट वन प्लेस लॉर्ड चैतन्य टोल्ड द गोस्वामीज That I wanted to go to Vrindavan to do these things, but my mother told me that I must live in Puri. So I am entrusting this mission to you.
एक बार चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया कि मैं वहाँ पर वृंदावन में जाना चाहता था, लेकिन मेरी माता के आगे नहीं जा पा रहा, इसलिए मैंने आपको ये सेवा सौंपी है.
With these words, Sri Chaitanya Mahaprabhu told the boatman to begin the voyage.
और महाप्रभु ने नाविक से कहा कि यात्रा की शुरुआत करें
एंड हियर वाज रूप गोस्वामी एट प्रयाग वाचिंग लॉर्ड चैतन्य कोस्ट अवे अलोंग द रिवर्स ऑन अ बोट
और फिर यहां पर रूप गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु नदी की ओर आगे बढ़ निकल
पड़े वाज अनबेयरेबल टू हिम हिज ही वाज ब्लाइंडेड विद टीयर्स एज ही फेल अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड
वो उनके लिए असहनीय था उनके आंखों में इतने आंसू आ गए और जमीन पर बेहोश गिर पड़े
लॉर्ड चैतन्य टोल्ड द डेक्कन ब्राह्मण ब्रिंग हिम होम एंड मेक हिम हैप्पी
भगवान ने दक्षिण ब्राह्मण को कहा कि आप इसको ले जाकर सुखी करें
एंड श्री रूप गोस्वामी वेंट टू वृंदावन
और फिर श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में रहने लगे
एंड सून सनातन मेट हिम एंड देन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी द सिक्स गोस्वामीज दे लिव्ड टू फुलफिल दिस मिशन दैट लॉर्ड चैतन्य हैड गिव देम थ्रू रूप गोस्वामी
और फिर बाकी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट ये सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु के मिशन को वृंदावन में करने लगे
एंड एज वी एक्सप्लेन्ड यस्टरडे इन द मॉर्निंग इट्स सो स्पेशल प्रयाग टू अस Because Srila Prabhupada met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in 1922 in Calcutta.
जैसे हमने कल बताया कि जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले 1922 में कलकत्ता के महीने में.
And a seed was planted in his heart.
उनके हृदय में एक बीज डाली गई थी.
The instruction to take Lord Chaitanya's teachings in the English language all over the world.
और वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में सब जगह पर प्रचार करें
द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1923 श्रीला प्रभुपाद मूव्ड विद हिज फैमिली टू अलाहाबाद
और अगले साल श्रीला प्रभुपाद अपने परिवार के साथ आकर अलाहाबाद में निवास करने लगे
एंड एस्टैब्लिश्ड द प्रयाग फार्मेसी
और प्रयाग फार्मेसी नाम की दुकान की स्थापना की उन्होंने
सो स्पेशल प्रभुपाद नेम्ड हिज बिजनेस प्रयाग
ये बहुत विशेष है क्योंकि प्रभुपाद अपने बिजनेस का नाम भी प्रयाग रखा
एंड ही हैड डॉक्टर गोश गिव अप हिज बिजनेस एंड
treat patients at the Prayag Pharmacy, and they work together.
और हम देखते हैं डॉक्टर घोष ने कैसे अपना बिजनेस यहाँ पर त्याग के प्रयाग फार्मेसी में आया.
And Srila Prabhupada lived here in Prayag from 1923 to about 1935.
और श्रील प्रभुपाद 1923 से लेकर 1945 तक यहीं पर निवास किए.
We explained yesterday how around 1932, some say 33, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati came from Vrindavan. Prabhupada met him in Koshi, and he came to Prayag, and it was here at the Sri Rup Gaudiya Math during the cornerstone laying that Srila Prabhupada was initiated. Both Harinam and Gayatri Diksha he received here.
और यही वो स्थान है 1933 में जहाँ पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को हरिनाम और गायत्री दीक्षा दोनों एक साथ प्रदान किए.
And on a regular basis, Srila Prabhupada was with his god brothers performing kirtan, giving lectures, and connecting people to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और नियमित रूप से प्रभुपाद जी प्रवचन भी करते और लोगों को चैतन्य महाप्रभु के साथ जोड़ते थे.
He received initiation in Prayag in that Gaudiya Math that was dedicated to Rupa Goswami.
Unko diksha us mission mein us math mein mili jahan Rupa Goswami ki seva mein jo arpan kiya gaya tha.
And eventually Srila Prabhupada went to Vrindavan.
Aur antatah Srila Prabhupada bhi Vrindavan mein gaye.
And he stayed at the place where Rupa Goswami had his bhajan kutir and his samadhi.
और वो उस स्थान पर रहे जहाँ रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि है.
राधा दामोदर टेम्पल.
राधा दामोदर मंदिर.
And there he translated the first canto of Srimad Bhagavatam.
वहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का अनुवाद किया गया.
And he was writing and editing Back to Godhead magazine.
और वो Back to Godhead magazine का संशोधन कर रहे.
And he was deeply absorbed in prayer and deeply absorbed and study and especially deeply immersed in chanting the holy names.
और वो प्रार्थना में मग्न रहते और विशेष करके नाम जप में बहुत पूरी तरह से मग्न रहते.
And with the blessings of Rupa Goswami he sailed to America.
और फिर बाद में रूपा गोस्वामी के आशीर्वाद से फिर वो बाहर निकले.
And established Rupa Goswami's, Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings like no one ever did in the history of creation in countries abroad.
और रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को उन्होंने इस तरह स्थापित किया जैसे किसी ने कभी नहीं किया हो.
1970 he brought his devotees about 40 back to India.
और वो 1970 में करीब 40 भक्तों को वापस भारतवर्ष में लेकर आए.
And he brought them to Prayag.
और फिर उनको प्रयाग में लेकर
आए. For the Ardh Kumbh Mela.
अर्ध कुंभ मेला के लिए लेकर आए.
And shortly after that, in 1972, at Rupa Goswami's Samadhi, Srila Prabhupada gave a one-month discourse on the Bhakti Rasamrita Sindhu, the nectar of devotion of Rupa Goswami.
और 1972 में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के पास प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु पे एक महीने के लिए प्रवचन किया.
The Bhakti Rasamrita Sindhu is what Lord Chaitanya spoke to Rupa Goswami here at Prayag in essence.
और भक्ति रसामृत सिंधु वो क्या है जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोला वही चीज है.
And by that grace we are here together with faith.
और उनकी कृपा से हम यहाँ पर श्रद्धा से एकत्रित हैं.
During this most auspicious, most holy time of Kumbh Mela.
ये बहुत ही पवित्र समय जो कुंभ मेला का है.
To associate with holy people, to hear holy teachings, and to bathe ourselves in the holy rivers.
साधुओं का संग करना, साधु का कित मुख से कथा सुनना और पवित्र नदियों में स्नान करना.
Of all holy baths,
our pavitra snan,
there is nothing so purifying.
उतना और कोई चीज पवित्र करने वाली नहीं है.
There is nothing so auspicious.
इससे बढ़कर मंगलकारी कोई नहीं.
Than to be with sincere, humble devotees.
सच्चे प्रामाणिक भक्तों के साथ रहना.
To chant the holy names.
नामों का कीर्तन करना. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे.
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. Therefore, it is the prime benediction for all humanity.
सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है.
I wish you all a very happy, auspicious Kumbh Mela.
आपको सबको बहुत ही मंगलकारी आशीर्वाद.
And let the Namamrita, the nectar of the holy name, emerge from your heart to drown the whole world.
आपके हृदय से नामामृत प्रकट हो और पूरे दुनिया को डुबो दे.
Shri Gauranga Mahaprabhu ki
jai.
Shri Rupa Goswami ki
jai.
Shri La Prabhupada ki
jai.
Shri Ramchandra ki
jai.
Ananti Kodi Vaishnava Vrinda ki
jai.
Hitai Gau Premanandi. Jai Jai Shri Radhe.
बहुत धन्यवाद.